राधे
जगद्गुरु कृपालु परिषद प्रेजेंटिंग चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ पॉडकास्ट फॉर अ बेटर एग्जिस्टेंस।
दोषी में भी हमको दोष नहीं देखना है, क्यों? क्योंकि देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इसका क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा है। सारा संसार ही सदोष है भगवत प्राप्ति से पहले। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तो जितने माया के दोष हैं, विकार हैं, वो सब हमारे भीतर हैं। तो सारा संसार ही दोषी है, सभी संसार में मायाबद्ध है। तो अगर हम सदोष में दोष का चिंतन करेंगे तो फिर उपासना के लिए हमारे पास समय कौन सा बचेगा? अरे, एक ही तो मन है, उसी मन से उपासना करनी है, भक्ति करनी है। और उसी मन से अगर हम दोषों का चिंतन करेंगे सदोष में भी, तो फिर साधना के लिए अवकाश ही कहां रह जाएगा? अरे, अपने ही मोहल्ले में केवल एक फैमिली के दोषों को ही अगर हम देखने बैठे तो उसी में हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। और ये क्षेत्र, ये तो हमें हर समय मिलेगा, हर जगह दोष मिलेंगे, क्योंकि इसी संसार में हमको रहना है। संसार छोड़कर तो हम कहीं जा नहीं सकते, इसी संसार में हम रहेंगे, चाहे किसी भी योनि में हो। जब बार बार संसार में आएंगे तो कोई ना कोई शरीर भी होगा, और शरीर होगा तो उसको चलाने के लिए संसार वालों से संपर्क भी रखना पड़ेगा। और जब संपर्क रखेंगे तो दोष दिखाई पड़ेंगे। अगर उन्हीं दोषों का चिंतन करेंगे तो फिर साधना कब करेंगे? और फिर हम स्वयं भी तो मायाबद्ध हैं। अरे, सारा संसार भगवत प्राप्ति से पहले दोष युक्त है, तो हम भी तो इसी संसार के अंतर्गत हैं, हम भी तो मायाबद्ध हैं, हम भी तो दोषों से युक्त हैं। तो फिर दूसरे में दोष हम कैसे देखते हैं? मैंने बताया ना, एक ही गड़बड़ी जो हम करते हैं, सबसे पहले अपने आप को निर्दोष मानते हैं, इसीलिए दोष देखना होता है। अगर हम अपने आप को सदोष मान लें तो फिर दोष देखने में आएंगे ही नहीं दूसरों के। जैसे देखिए, कोई व्यक्ति काला है तो एक काला व्यक्ति दूसरे काले व्यक्ति को देख के ये तो नहीं कह सकता, उसका मजाक तो नहीं उड़ा सकता कि क्या काला शरीर लेकर के बड़ा हुआ है। अरे, वो स्वयं भी तो काला है, वो काले की बुराई कैसे करेगा? ऐसे ही कोई व्यापारी, वो सर्विस वाले की बुराई कर सकता है, या सर्विस वाला वो व्यापारी की बुराई कर सकता है कि तुम्हारी भी कोई लाइफ है, दिन रात पिसते रहते हो, हमारी सर्विस अच्छी है कुछ घंटे की, न किसी प्रकार का घाटे का डर, न मुनाफे की चिंता, हर महीने पकी पकाई मिल जाती है जितनी फिक्स है। तो सर्विस वाला व्यक्ति वो व्यापारी की बुराई कर सकता है, और इसी प्रकार व्यापारी जो है वो सर्विस वाले की बुराई कर सकता है कि तुम्हारी भी कोई लाइफ है, हर समय धुक धुक रहती है, सस्पेंड न कर दिए जाए, और जितना हम कमा लेते हैं एक महीने में, तुम कई साल में भी उतना नहीं कमा पाते, नहीं जोड़ पाते। बिजनेस में तो एक अंगूठा छाप भी लखपति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। तो दोनों अलग अलग एरिया के हैं, इसीलिए बुराई कर सकते हैं, लेकिन एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की बुराई कैसे करेगा, वो तो स्वयं व्यापारी है। अरे एक कैदी वो दूसरे कैदी को देख के ये तो नहीं कह सकता ना, क्या तुम्हारी भी लाइफ है, तुम कैदी हो तो आप क्या है महाशय, आप भी तो मेरे साथ जेल में ही हैं, कैदी हैं। तो संसार में ऐसा कोई नहीं करता, जो दूसरे एरिया वाला व्यक्ति है वो बुराई कर सकता है दूसरे क्षेत्र की, अपने अपने एरिया की बुराई कैसे करेंगे। तो ऐसे ही अगर हम स्वयं को दोषी माने कि मैं भी दोषी हूं, तो फिर दूसरे में दोष देखना हो ही नहीं सकता। लेकिन हम यही गड़बड़ करते हैं कि सबसे पहले दूसरे में जब दोष देखते हैं तो इसका कारण यही है कि अपने अंदर दोष राहित्य की बुद्धि लाते हैं कि मैं तो निर्दोष हूं। तो सदोष में सदोष का चिंतन करना ये भी कुसंग है। आप ये तर्क नहीं दे सकते कि हम तो दोषी में दोष देख रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं। अरे हम स्वयं भी तो दोषी हैं, तो हमें अधिकार ही क्या है किसी दूसरे के दोष देखने का। और फिर अगर आप ये कहें कि जी वो आप जो साधना की बात कर रही हैं कि हम साधना कब करेंगे, दोष ही देखते रहेंगे, तो एक ही तो मन है, तो उसका अगर आप ये तर्क दें कि पूरे टाइम थोड़ी ना हम दोष देखते हैं, अरे कुछ घंटे ये भी कर लिया करेंगे, कुछ घंटे साधना भी कर लिया करेंगे। तो मैंने बताया ना, इतना बड़ा संसार है और सब तरफ दोषी हमको मिलेंगे। और फिर भगवान की शर्त है, तेषाम नित्याभियुक्तानाम यो माम स्मरति नित्यशः। सर्वत्र भगवान की शर्त है कि भक्ति निरंतर करनी होगी, उसमें 0.1% भी कहीं गैप न हो, एक क्षण भी हमारा मन कहीं और न जाए, निरंतर भगवान में अटैच्ड हो, तब हमारा काम बनेगा। तो ये गड़बड़ी नहीं चल सकती कि कुछ देर को ये भी कर लिया करेंगे और कुछ देर साधना भी कर लेंगे, यानी एक तरफ कमाते रहे दूसरे तरफ गमाते रहे, तो फिर हासिल क्या होगा। और अगर आप ये कहें कि जी वो हम तो थोड़े कम दोषी हैं, सामने वाला अधिक दोषी दिखाई पड़ता है, तो संसार में जैसे किसी की साड़ी अधिक कीमती होती है तो उसको देखने का शौक हो जाता है लोगों को, अरे साड़ी तो हमारे पास भी है लेकिन उसकी जरा अच्छी है, तो ऐसे ही दोषी ठीक है हम भी हैं लेकिन हम जरा कम दोषी हैं, उसके तो दोष इतने सारे दिखाई पड़ रहे हैं, वो तो हमसे बड़ा पापी है बड़ा दोषी है, तो उसके दोष देखकर हम क्या गुनाह कर रहे हैं। हाँ यहां भी हम गलत हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर बात छोटे बड़े की है ही नहीं कि हम छोटे दोषी हैं और वो बड़ा दोषी है, सब बराबर मात्रा के दोषी हैं हम भगवत प्राप्ति से पहले, क्योंकि भगवत प्राप्ति से पहले जितने माया के विकार हैं वो सबके भीतर हैं, वो एक साथ भगवत प्राप्ति पर ही समाप्त होते हैं, उससे पहले नहीं। हाँ केवल इतना हम कर सकते हैं कि उन दोषों को कुछ लोग छिपा लेते हैं, कुछ के दोष अधिक प्रकट हो जाते हैं दिखाई पड़ते हैं, कोई चतुर है तो अपने दोषों को छिपा लेता है अधिक मात्रा में, या फिर कोई एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है तो वो दोष छिपे रहते हैं सामने नहीं आ पाते। जैसे देखिए अभी कोई आप लोगों को देखे तो दूर से आया कोई व्यक्ति देखने वाला यही समझेगा कि कितने उच्च कोटि के साधक हैं, कितना एकाग्र होकर भगवत विषय को ग्रहण कर रहे हैं, ये तो महापुरुष लगते हैं। क्यों, क्योंकि इस समय हमको कोई विकार का एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है तो हम सभी शांत दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन यहीं पे जरा सा एटमॉस्फेयर मिल जाए जरा सा कोई धक्का लगा दे पास वाला व्यक्ति, फिर देखिए हम कैसे गुर्राते हैं, कैसे मुंह बनाते हैं, कैसे क्रोध आ जाता है। यानी दोष हमारे भीतर है, एटमॉस्फेयर मिला तो तुरंत प्रकट हो जाता है। जैसे भक्त लोग राम कहते हैं और सामने राम प्रकट हो जाते हैं, ऐसे ही एटमॉस्फेयर मिलते ही हमारे सारे दोष बाहर आ जाते हैं। तो हम सभी समान मात्रा के दोषी हैं, ऐसा नहीं है भगवत प्राप्ति से पूर्व कि ये कोई छोटा दोषी है, दूसरा बड़ा दोषी है, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अनंत जन्मों के अनंतानंत पाप वो हम सबके साथ हैं, एक जन्म का लेखा जोखा नहीं है यहां पर। अनंतानंत जन्मों में अनंतानंत पाप प्रत्येक जीव कर चुका है, इसीलिए छोटे बड़े का प्रश्न ही नहीं, इतने अधिक पाप हैं हमारे, इतने दोषी हैं हम। एक जन्म में एक पाप भी अगर हमने किया हो तो भी अनंत जन्म हमारे हो चुके हैं, तो अनंत मात्रा के दोषी हो गए हम। और दूसरा जीव भी जिसने भगवत प्राप्ति नहीं की वो भी अनंत मात्रा का दोषी है। तो इसीलिए यहां पर छोटे बड़े की बात नहीं हो सकती। और फिर केवल वर्तमान काल को देख करके किसी चीज का निर्णय नहीं किया जा सकता, संसार में भी ऐसा नहीं होता। संसार में भी हम ऐसी मूर्खता नहीं करते कि केवल वर्तमान परिस्थिति को देखकर किसी के बारे में जजमेंट दे दें। जैसे मान लीजिए आप बैंक गए, आपने 500 रुपया जमा कराया और आपके सामने ही एक दूसरे व्यक्ति ने 100 रुपया जमा कराया। अब दूसरे दिन आप गए, वो व्यक्ति भी पहुंचा, तो जिसने 100 रुपये जमा कराए थे उसने 1000 रुपया बैंक से निकलवाया और जिसने 500 जमा कराए थे उसने भी बैंक वाले से 1000 रुपये मांगे। तो बैंक वाला कहता है आपका दिमाग खराब है, अरे आपको 1000 कैसे मिलेंगे, कल 500 रुपये ही तो आपने जमा कराए हैं। तो वो व्यक्ति कहे कि अरे इसने तो मेरे सामने 100 रुपया जमा कराया था, इसको तो आपने तुरंत निकाल के दे दिया 1000 रुपया। अरे भाई तो ये आपसे पहले जमा करा चुका है। केवल कल की स्थिति देख करके आप कैसे कह सकते हैं कि केवल 100 रुपया जमा कराया है इसने। तो केवल वर्तमान को देखकर तो संसार में भी निर्णय नहीं होता। तो ऐसे ही अगर हम देखें किसी साधक को कि इसके तो बहुत आंसू आ रहे हैं और दूसरे व्यक्ति के नहीं आ रहे हैं, तो हम अपना अनुमान लगाने बैठ जाएं कि इसका प्रेम कम होगा भगवान से, ये तो रो ही नहीं रहा है, और एक व्यक्ति जो रो रहा है उसका बड़ा प्रेम होगा, ऐसा सोचना गलत है। अरे जो नहीं रो रहा है उसका प्रेम रोने वाले से अधिक हो सकता है, लेकिन इस समय उसका वो विरह छिपा हुआ है, दबा हुआ है, हो सकता है वो 1 घंटे के बाद प्रकट हो। तो हम कैसे जजमेंट दे सकते हैं किसी के भी विषय में, और हम सर्वज्ञ नहीं, सर्वांतरयामी नहीं, किसी के भीतर की स्थिति हम जानते नहीं। इसीलिए चूंकि सभी दोषी हैं, इसीलिए सदोष में दोष का चिंतन भी बहुत बड़ा कुसंग है। इसी में हमारा समय सारा व्यर्थ जा रहा है। तो दोष का चिंतन हम इसीलिए करते हैं किसी में, क्योंकि अपने को दोष रहित मानते हैं। और ये दोष राहित्य की बुद्धि हमारे अंदर क्यों आती है, उसका एकमात्र कारण है अहंकार। दीनता नहीं है हमारे भीतर। वही जो कल मैंने आप लोगों को बताया था, गौरांग महाप्रभु ने आधारशिला बताई है भक्ति की, दीनता। वो कहते हैं अरे दुनिया वालों कान खोलकर सुन लो, ये जो तुम लोग सुनते हो ना कि गौरांग महाप्रभु ने कहा है कि भगवन नाम संकीर्तन ये एक ऐसी दवा है जिससे भगवत प्राप्ति चुटकियों में हंसते हंसते खेलते खेलते गाते गाते हो जाती है। लेकिन इससे पहले अपनी आधारशिला को ठीक कर लेना। बिना दीनता के कुछ नहीं प्राप्त होगा, उसी के ऊपर भक्ति का महल खड़ा होगा। तो अपने आप को दोष रहित मानने का एकमात्र कारण अहंकार है, और उस अहंकार का कारण अविवेक। हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, नासमझ हैं, इसीलिए अहंकार का कोई कारण न होते हुए भी अहंकार करते हैं, कोई सामान न होते हुए भी अहंकार करते हैं। इसीलिए सारी साधना चौपट हो जाती है हमारी। स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो अब हमें इस कुसंग से सावधान रहना होगा, अगर वास्तव में हम कुछ पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। स्वयं के भीतर दोष देखने होंगे। अरे वही क्या कम है, अगर शौक ही है हमको बुराई देखने का तो अपने भीतर देख लें, कम से कम लाभ तो हो, उनको फिर दूर करने का प्रयास करें। दोष देखना ही हो तो गोविंद राधे अपने अनंत दोष मन को दिखा दे। राधा गोविंद गीत। अपने ही दोष क्या कम है। तो हमारा ये अंतःकरण एक कपड़े के समान है, गंदा कपड़ा जो अनादिकाल की गंदगी से युक्त है, इसको हमें साफ करना है, यही तो साधना है। तो साफ करने के लिए हरि गुरु का चिंतन करना है। जैसे गंदे कपड़े को धोने के लिए शुद्ध पानी चाहिए, और अगर शुद्ध पानी नहीं है, गंदगी में हम उसे डुबो देते हैं, तो कपड़ा हमारा साफ क्या होगा, वो तो और गंदा हो जाएगा, हमने उसे साफ करने के बजाय और गंदगी में डाल दिया। तो ऐसे ही जिस अंतःकरण को हमें बुहारना है, सफाई करनी है, गंदगी को निकालना है, उसकी जगह हम और गंदगी को ले आते हैं, और दोषों का चिंतन करते हैं, तो हमारा अंतःकरण तो और गंदा होता जा रहा है। और फिर कब तक ऐसा करेंगे, अरे अनादिकाल से करते आए हैं, कम से कम अब तो अपने मन को इस गंदगी से फ्री करें। वो मन बेचारा मनमोहन के पास जाना चाहता है, हम उसे जाने नहीं देते, स्वयं दोषों का चिंतन करके उसको बिगाड़ते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारा मन बड़ा चंचल है, ये हमारी सुनता नहीं। अरे हम स्वयं ही तो दोषों का चिंतन करते हैं, तो अब तो कम से कम उसको फ्री कर दें, वो मन मनमोहन के पास जाए, उनका चिंतन करे। तो हमें प्रतिज्ञा करनी होगी आत्म कल्याण के लिए, कि न हम किसी के दोषों का चिंतन स्वयं करेंगे और न दूसरे से सुनेंगे, क्योंकि सुनने से भी हमारी हानि होती है। आप ये नहीं कह सकते कि अजी वो हम तो नहीं करते चिंतन, लेकिन सामने वाला बात कर रहा है तो सुनने में क्या जाता है, थोड़ी देर सुन लेते हैं। अगर सुनने से चिंतन न होता तब तो कोई बात नहीं थी, केवल सुन के वही बात खत्म हो जाती, ठीक है, फिर भी उसमें उतनी देर तो समय खराब होता ही, साधना चौपट होती ही। लेकिन चलो सुनने से चिंतन न भी करें तो एक दो मिनट में बात खत्म हो गई, लेकिन सुनने के बाद चिंतन होता ही है। किसी भी विषय को जब हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, आंख से हमने देखा ये मंदिर है, तो सोचना हो ही जाता है कि यहां सब भक्त बैठे होंगे, भले ही वहां कोई पाखंडी बैठा हो। जिस भी विषय को हम ग्रहण करते हैं तो फिर उसका चिंतन होता है, चाहे संक्षेप में ही हो। तो इसीलिए सुनना भी खतरनाक है, तो उसके लिए भी हमको प्रतिज्ञा करनी होगी कि नहीं सुनेंगे। अरे एक क्षण का कुसंग वो ही सर्वनाश कर सकता है।
एक क्षण का कुसंग राधे आजा मिल को महा पापी बना दे।
अजामिल वेदों का ज्ञाता प्रैक्टिकल धर्मात्मा जितेंद्रिय, वो अजामिल पापियों की एग्जाम्पल बन गया एक क्षण के कुसंग से, इतना शक्तिशाली है ये। तो हम ये गुमान नहीं कर सकते भगवत प्राप्ति से पहले तक कि कुसंग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो हमें इस दोष से किसी भी प्रकार इस कुसंग से बचना होगा। प्रतिज्ञा पूर्वक हम नियम बना लें कि किसी के मुंह से बुराई नहीं सुनेंगे, न स्वयं करेंगे किसी के दोषों का चिंतन कथन, न किसी से सुनेंगे। अगर कोई कर भी रहा है तो उसका टॉपिक चेंज कर दीजिए। बहुत सारी तरकीबें हैं इस कुसंग से बचने की। स्वयं अगर किसी के दोषों का चिंतन होता है तो तुरंत अपने मन को समझा दीजिए कि महाशय क्या करने जा रहे हो, अरे तुम इस दोष से रहित हो क्या जो दूसरे के दोष का चिंतन कर रहे हो, तुम स्वयं महापुरुष हो क्या। इस प्रकार विवेक से मन को समझा करके वहीं पर उस बात को समाप्त कर दीजिए। और दूसरा अगर कोई बुराई कर रहा है तो किसी प्रकार घुमा करके टॉपिक चेंज कर दीजिए, अरे वो ऐसा हुआ, वो रात को मुझे सपने में श्याम सुंदर ने ऐसा ऐसा कहा, तो वो भी फिर आपकी बात सुनने लगेगा, वो बुराई का टॉपिक समाप्त हो गया वहां पर। और फिर भी अगर कोई तुला हुआ है कमर कस के कि नहीं हम तो दोष का कथन करेंगे, तो फिर तो आप प्रतिज्ञा कर लीजिए कि किसी भी प्रकार कुछ भी करना पड़े पहले आप रिक्वेस्ट कर लीजिए, हाथ जोड़ के बता दीजिए कि हमारी ऐसी प्रतिज्ञा है कि हम इस प्रकार की बातें नहीं सुनते, टाइम खराब नहीं करते। आपको करना है तो कोई सत्संग की चर्चा कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। नहीं मानता वो, बुरा मानता है तो उससे संबंध ही समाप्त कर दीजिए, वो दोस्त हो कोई हो। या घर में भी स्त्री पति इत्यादि कोई हो, स्ट्रिक्टली उनको बता दीजिए कि इस प्रकार की बात हमको नहीं करनी। अरे आत्मा के कल्याण की बात है, इतनी बड़ी हानि हम कैसे होने देंगे। इतना बड़ा जहां लॉस हो उस चीज को तो हम सहन नहीं कर सकते। तो जहां कुसंग उत्पन्न हो वहीं पर हमें उसे दबा देना है। जैसे देखिए संसार में स्त्रियां रसोई घर में काम करती हैं, बाई चांस कहीं आग लग गई कपड़े में, तुरंत उसको हाथ से दबा देती तो आग फैल नहीं पाती, बच जाती है नुकसान से, वहीं दब जाती है। तो ऐसे ही जहां कुसंग का प्रकरण आए उसको वहीं समाप्त कर दीजिए। अगर हम प्रतिज्ञा कर लेंगे अपने कल्याण के लिए तो फिर हमें कौन रोक लेगा। हम स्वयं असावधान रहते हैं, स्वयं अपने दोषों का चिंतन नहीं करते, इसीलिए हम रस लेकर के उन कुसंग की बातों को स्वयं सुनते भी हैं, करते भी हैं। और उससे हासिल क्या होता है, मिलता किसी को कुछ नहीं है, न सुनने वाले को न बोलने वाले को। अनावश्यक हम अपने स्वर्णिम मानव देह को गंवा रहे हैं केवल लापरवाही के कारण। तो इतने गंभीर कुसंग के विषय में समझ करके हमको लापरवाह नहीं रहना है, बहुत सावधान रह करके सावधानी पूर्वक प्रतिज्ञा करके इस कुसंग से बचना होगा। इस परहेज के साथ अगर हम भगवान नाम रूप इत्यादि दवा का सेवन करते हैं तब उस दवा के सेवन से लाभ होगा और एक दिन हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, श्रीमद् युगल सरकार की, प्यारी प्यारी अम्मा की।
Thank you for joining Jagat Guru Kripalu Parishad podcast.